जेह मारक के गने जाय न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जेह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सजानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जेह महा प्यान तप बो गाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तो जाकर खे, तह नानक हर हर अमृत बरखे।
ओम शांति। सुखमणि साहिब, जेह मारक के गने जाह न कोसा, हर का नाम उहा संतोषा, जिह पेंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा कोना सिजानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जह महाभयान तपत बह धाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझ आकर के तह नानक हर हर अमृत भर के। यहां पर 5 बातों की चर्चा है। सबसे पहला, जेह मार्ग के गने जाह न कोसा, हर का नाम उहा संतोषा। जहां पर मार्ग बहुत लंबा हो, वहां पर एक परमात्मा का नाम ही सहारा है, आधार है। लंबा मार्ग, बहुत सारे मील उसमें है, बहुत सारे कोस जो गिने ना जाए, गने जाए ना कोसा, जेह मार्ग वह मार्ग, हर का नाम उहा संतोषा। ऐसे मार्ग में एक परमात्मा का नाम ही आधार है। अध्यात्म का जो मार्ग है वो बहुत लंबा मार्ग है। क्यों? ये मार्ग बहुत लंबा है। क्यों? और ऐसे लंबे मार्ग में एक ही आधार है, एक ही सहारा है, कोई देहधारी सहारा नहीं। इस मार्ग में अकेले ही जाना है। आज की मुरली में अकेले के विषय में एक वाक्य आया है, कौन सा? बहुत अच्छा वाक्य है सुबह की मुरली में, सोल कॉन्शियस से अकेले में ही बाप को याद कर सकते हो। सोल कॉन्शियस से अकेले में ही बाप को याद कर सकते हो। तो मार्ग बहुत लंबा है, कठिनाइयां बहुत सारी है, विघ्न बहुत सारे हैं, कटीला मार्ग है, कांटे ही कांटे हैं। ऐसे लंबे मार्ग में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी माया के रूप है जो हमने कभी सोचे नहीं थे। और जितना व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ने लगता है, नए नए विघ्न आते हैं, नए नए लोगों के द्वारा विघ्न आते हैं, पुराने पुराने लोगों के द्वारा नए नए विघ्न आते हैं, जो सहयोगी थे असहयोगी बन जाते हैं। सब कुछ होता है। तो ये मार्ग बहुत लंबा है और इस मार्ग में बहुत सारे प्रलोभन साइट सीन्स है, इस मार्ग में बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जहां पर व्यक्ति रुक जाता है और सोचता है मंजिल आ गई, जैसे सफलता हुई, रुका, छोटी मोटी सफलता, सेवा की सफलता, थोड़ा बहुत ज्ञान की सफलता, योग की सफलता, योग के अनुभव, अशरीरपन का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, छोटी छोटी बातें आती है बीच में और उसको हम समझ लेते हैं ये बहुत बड़ी है, ये पहले कभी नहीं हुई थी अनुभूति, और वो अनुभूति को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो आगे की अनुभूतियां होना बंद हो जाता है। स्तुति, प्रशंसा, प्रसिद्धि, नाम, सेवा का विस्तार, ये सब ही बंधन बन जाता है। जो हमने सोचा था इसके लिए जीवन है, परंतु जिसके लिए जीवन दिया गया वही वस्तु बाधा बन रही है। यह भी हो सकता है। इसके लिए कहा यह मार्ग ऐसा है कि जह मार्ग के गने जाए न कोसा, गिनती नहीं कर सकते इतना लंबा यह मार्ग है, इतने सारे कोस इसमें चलना है। हर का नाम उहा संतोषा, ऐसे मार्ग में वो एक की ही पालना है, वो एक ही साथी है, वो एक ही सहारा है। और जब जब चेतना मनुष्यों को सहारा बनाती है, फंसती है, अटकती है। कल की अव्यक्त वाणी दूसरा भाग, रूहानियत अमानत समझो दूसरों को भी। ये सेंटर, ये जिज्ञासु, ये लोग, ये शरीर, सब कुछ अमानत है। अमानत समझोगे तो अनासक्त रह सकोगे, तो बुद्धि में राहत होगी, नहीं तो घबराहट, नहीं तो थकावट। आत्मा थक जाती है सेवा करते करते, परीक्षाएं देते देते। सीता अंत में क्या कहती है उस सभा में, जब वाल्मीकि लवकुश के साथ सीता को लेकर आता है और राम को कहता है कि मैं वाल्मीकि हूं, मैंने कभी कोई असत्य नहीं की बोला, कोई झूठ नहीं बोला, और मैं अगर बोला हो, अगर मैं कह रहा हूं कि सीता परम पवित्र है, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे अब तक की सारी तपस्या, सारे पुण्य भस्म हो जाए। तो वो राम को कहता है अब इसको स्वीकार करो। तो राम कहता है मैं आपके वचनों को मानता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं ये भी मानता हूं कि ये मेरे ही बेटे हैं दो, परंतु सीता को एक अग्नि परीक्षा फिर देनी होगी। लोकपवाद, सीता कहती है मैं परीक्षा देते देते थक गई हूं, हे धरती मां अब मुझे अपनी शरण में ले लो। क्या कहती है, मैं परीक्षाएं देते देते थक गई हूं। धरती फटती है, धरती मां आती है, वो धरती मां कहती है ये दुनिया अब तेरे लिए नहीं है, चल मेरे साथ, उसको ले जाती है। और राम सीते 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 करते रह जाता है और बच्चे मां मां करते रह जाते हैं। सीता प्रतीक आत्मा का है। इस मार्ग में भी इतनी सारी परीक्षा है, निरंतर परीक्षा। एक परीक्षा से अभी पूरे नहीं निकले तो दूसरी खड़ी है। झाड़ियों से जैसे निकलते हैं ना, झाड़ियों से चलते हैं तो कपड़े झाड़ियों में अटक जाते हैं, तो हम उसको निकालते हैं, तो जब निकालने की कोशिश करते हैं और फिर सफल हो जाते हैं, तब तक दूसरा इधर से अटक गया है। तो ये मार्ग में भी असंख्य परीक्षाएं हैं, असंख्य अग्नि परीक्षाएं हैं। थकना नहीं, थकावट रुकावट घबराहट तब होगी जब रूहानियत कम होगी। और एक वाक्य था कल की मुरली में, रूहानियत होगी तो सारी परीक्षाएं पास कर सकोगे। तो ऐसी रूहानियत को धारण करना है। एक व्रता पर अटेंशन, पवित्रता पर अंडरलाइन, रूहानियत की गुह्यता में जाओ, अनासक्त हो जाओ, समर्पण हो जाओ, रूहानी दृष्टि हो, देह को ना देखो, जिस्म को ना देखो, सदा हर्षित रहो, सदा स्नेही रहो, ज्ञान युक्त रहम, रूहानियत का रुहाप। ऐसी 10 बातें थी रूहानियत की शक्ति धारण करने के लिए। अपने अंदर ये शक्ति धारण करो तो परीक्षाएं पास होगी। एक व्रता, एक व्रता अर्थात एक से प्रण, एक पिता, एक भाई, एक माँ, वही सब कुछ, एक साजन, एक दोस्त, एक सखा, एक गुरु, एक टीचर, 8 मुख्य संबंध है बाबा से, वो 8ों के 8ों संबंध एक से, माँ बाप टीचर, सदगुरु, मित्र, साजन और भाई या बहन और बच्चा, सब एक से एक व्रता पर अटेंशन, पवित्रता को अंडरलाइन, रूहानियत की गुह्यता में जाओ, अमानत समझो, समर्पण हो जाओ, परीक्षाएं पास करोगे, सदा स्नेही, सदा हर्षित और रूहानियत की ज्ञान युक्त रहम, रूहानियत का रुहाब। तो मार्ग लंबा है। संडे की मुरली पहला भाग, मुश्किल और मेहनत से बाबा तुमको छुड़ा देते और सहज योगी बना देते। कितनी मेहनत की, तन से मेहनत की, मन से मेहनत की, धन से मेहनत की, शरीर को चलाने की मेहनत, शरीर निर्वाह की मेहनत, मन को भगवान से लगाने की भिन्न भिन्न साधनाओं की मेहनत, धन इकट्ठा करने की मेहनत। अब भी नौकरी करते हो परंतु अब ट्रस्टी होकर करते हो, अभी भी सर्वेंट। कहां ताज तख्त और तिलकधारी, प्राप्तियों के भंडार और प्रकृति दासी, और कहां अब पर स्नेह की पूंजी है तो सेकंड में ऊपर जा सकते हो। वो लोक वो धाम इस बाउंड्री से, इस संसार की बाउंड्री से पार। स्नेह की पूंजी जमा करनी है अंदर तो ऊपर जा सकेंगे। तो पहली बात थी मार्ग। मार्ग कैसा है? बहुत लंबा है। लंबा है पर साथी वो है। लंबा है परंतु डर नहीं, उसकी छत्र छाया है। तो ये सबसे पहली बात कि मार्ग लंबा है माना, परंतु उसके संग से, उसके साथ से, उसकी सोहबत से सहज है। अकेलापन नहीं, एकाकीपन नहीं, उदासी नहीं, दुखी नहीं। दुखी हो जाती है आत्मा, बहुत सारी परीक्षाओं का जब सामना करना पड़ता है तब दुखी हो जाती है। सब कुछ करते हुए भी, हम एक जगह गए थे, वहां पे बहुत सारी माताएं थी। वो आई तो उन्होंने कहा कि आप जो भी बता रहे हमको सब पता है, पर हमको छुड़ाओ, हम बंधन में, हम क्या करें, पता हमको सब है पर हम गृहस्थ के बंधन में ऐसे जकड़ी हुई है, ऐसी फंसी हुई है, एक तरफ पति और दूसरी तरफ बच्चे। क्लास कराने तो आसान है पर हम बंधन में, अब क्या करें, कैसे छूटे, कुछ करो हमको छुड़ाओ, कैसे छुड़ाए, कौन किसको छुड़ाएगा। हर एक को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं निश्चित करना है, क्योंकि बंधन हमने ही निर्माण किए, किसी और ने नहीं किए। स्वरचित बेड़िया है, जंजीरे है। दूसरा, जिह पेंडे महाअंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पर महाआनंदकार हो वहां पर एक उसका नाम, उसकी याद की उजियारा प्रकाश है, आलोक है। कौन सा अंधकार? ब्राह्मणों के जीवन में कौन सा अंधकार है? किसका? तो सुखों ने अंधकार को लाया है, सुख सुविधाओं का अंधकार। अच्छा, और अहंकार का अंधकार, ये सबसे घटाटोप अंधकार है अहंकार। किसका? अहंकार का अंधकार। मैं कुछ हूं, कल बाबा ने कहा था ट्रस्टी, ट्रस्टी हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। घर उसका, डायरेक्शन उसके, शरीर भी उसका, हमारी इच्छा और हमारी आवश्यकता अनुसार नहीं, उसका डायरेक्शन है इसलिए कार्य कर रहे। ट्रस्टी हो जाओ। ये घर, तीन पैर पृथ्वी, बाबा का घर, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ट्रस्टी भाव, अमानत, डबल नाइट, कोई बोझ नहीं, ऐसी स्थिति। तो अहंकार का अंधकार, और कौन सा अहंकार है ब्राह्मणों के जीवन में? अहंकार अंधकार, विस्मृति का अंधकार, भूले हुए रहते हैं, कर्तव्य भूले हुए रहते, कार्य भूला हुआ रहता है, स्व की पहचान भूली हुई रहती है। अब अशरीरी बनो, सुबह की मुरली में है, देही अभिमानी भव। बाप आए हैं तुम्हें रावण की जंजीरों से छुड़ाने। अब का जो राज्य है वो कैसा है? कांग्रेस का, मना राजसत्ता का, कैसा? क्षणभंगुर और मृगतृष्णा के समान राज्य, बाबा ने कहा। सुख यहां है नहीं, करके कुछ पद मिल जाएगा छोटा मोटा, पर सुख नहीं। दुखों में है आत्मा लिपटी हुई, दुखों का अंधकार, अहंकार का अंधकार, विस्मृति का अंधकार, आलस्य का अंधकार, अलबेलेपन का अंधकार, गफलत का अंधकार, बार बार गलतियां करते रहना, पता सब है फिर भी गलती, मिस्टेक्स। बाप अभूल बनाने आए हैं, परंतु भूले हो रही है, और हर भूल आत्मा को कमजोर कर देती है, आगे बढ़ने का उत्साह कम हो जाता है। भूलों का अंधकार, धन का अंधकार, नाम मान शान प्रसिद्धि का अंधकार, सीट पद पोजीशन का अंधकार, रेस, आगे निकल जाने की रेस, उसका अंधकार, जेलसी का अंधकार, दूसरा आगे जा रहा है उसको आगे नहीं जाने देना है, हम गए नहीं पहुंचे तो चलेगा पर ये नहीं पहुंचना चाहिए, ये भी तो अंधकार है। भाव और भावना का अंधकार, कल की मुरली में था ना, भाव और भावना बदल गई, ईश्वरीय भाव आ गया, सेवा का भाव आ गया। तो जहां अंधकार है वहां ही परमात्मा की याद उजियारा है। किसी भी अंधकार में हम फंसे हुए हैं जीवन के, पहले तो ये प्रतीति हो जाए, ये अनुभव हो जाए, ये साक्षात्कार हो जाए, ये रियलाइजेशन हो जाए, महसूसता हो जाए कि मैं इस समय अंधकार में हूं, और ये जो अवस्था है अंधकार की अवस्था है, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड है, इन टू माइंड्स, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं या नहीं करूं, ये देखूं या नहीं देखूं, ये सुनूं या नहीं सुनूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, दोनों चीजें हो रही है, एक तरफ तपस्या एक तरफ मनोरंजन, कहां जाना है निर्णय है प्रतिपल, एक तरफ इंद्रिय सुख है एक तरफ अतिंद्रिय सुख है, एक तरफ झरमुई झगमुई संसार का चिंतन है दूसरी तरफ ज्ञान का चिंतन है, एक तरफ संसार की आत्माओं से योग है एक तरफ परमात्मा से योग है, एक तरफ सेवाओं का विस्तार है जिसमें मैंपन और सकाम सेवा है, और दूसरी तरफ निष्काम सेवा, जिस सेवा में नाम की कोई चाह कामना नहीं, इधर या उधर। पहले तो ये समझना है कि मैं अंधकार में हूं, कंफ्यूजन में हूं, उलझन में हूं, बुद्धि को राहत नहीं है, मन बेचैन है। बाबा को लिख के बताओ, कल कहा बाबा ने, बाप को बच्चों के उल्हाने बहुत पसंद है, बाप को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाओगे, और किसको सुनाओगे, बाप ही को ही सुनाओगे ना। लाड़ प्यार बाप बच्चों के बाप को पसंद है, तो मन में जो भी आता है इसको मनोविज्ञान कहता है जर्नलिंग, जॉट डाउन योर इमोशंस, जो मन में भाव और भावनाएं उत्पन्न होती है उनको लिखने का अभ्यास करना है, लिख देना है और फिर शाम को पढ़ना कि ये ऐसे भाव भी मेरे अंदर प्रकट हुए, कितना निगेटिव है, कितना देहभान वाला है। इसको कहते हैं जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वयं को समझने का, स्वयं के इमोशंस को समझने का, क्योंकि यदि हम अपने 24 घंटे के इमोशंस देखे, कहीं रिकॉर्ड नहीं है उसका, क्योंकि हम भूल जाते हैं, और यदि हमने रिकॉर्ड रखा बीच बीच में एक डायरी में, जिसको कहते हैं इमोशनल जर्नलिंग, वो जर्नल में भाव और भावनाओं को लिख देना, फिर थोड़े समय के बाद या दूसरे दिन रात में जब उसको पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा पढ़ के कि ऐसे भाव भी मेरे अंडर प्रकट होते हैं। एक तरफ तो हम नारे लगाते मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और यदि सच्चाई से लिखा, आज भी कहा सुबह बाबा ने सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो, सच्चाई से लिख दिया कि हाँ इस आत्मा को देखते ही मेरे अंदर एक तीव्र वेग की घृणा भावना उत्पन्न हुई, इसको देखते ही ऐसा लगा कि क्या लगा क्या लगा। खलील गिब्रान ने एक बहुत सुंदर पोयम लिखी है, उसने लिखा है कि माँ और बेटी, उन दोनों को एक बीमारी थी, सोमनैम्बुलिज्म। माँ और बेटी को एक बीमारी थी सोमनैम्बुलिज्म, अर्थात नींद में चलने की। सो जाती थी दोनों तो नींद में उठ के चलती थी। तो एक रात ऐसी हुई कि दोनों का आपस में बहुत प्यार, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी ऐसी दोनों माँ बेटी। एक रात और पिता गुजर गए, सो गई दोनों, दोनों ही उठ गई, आधी रात को गार्डन में पहुंच गई और माँ ने बेटी से कहा, तेरी वजह से मेरा जीवन नरक बन गया है। नींद में, नींद में है और नींद में चलने की बीमारी है, बोलना उसको पता नहीं क्या बोल रही है, जो निकल रहा है सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा है। वो कहता है तेरी वजह से सब कुछ मेरे जीवन में हुआ, जो भी आता है सब तेरे तरफ ध्यान देते हैं, मेरे तरफ तो कोई देखता ही नहीं। और उसको इतनी सारी बातें सुनाती है, तुम काम नहीं करती, तुम ऐसा करती, तुम वैसा करती, अच्छा हो गया तुम पहले ही मर गई होती। फिर उसकी बेटी वहां खड़ी होती है, वो कहती है तेरे जैसी मां किसी को ना मिले, तुम्हारी वजह से मेरा जीवन नरक बन रहा है, तुम्हारी वजह से अभी तक इस घर में हो, नहीं तो मैं कब की निकल गई होती यहां से। और फिर थोड़ी देर में सुबह हो जाती है, सूरज निकलने लगता है तो नींद पूरी हो जाती है। फिर माँ कहती है, अरे बेटी तुम यहां क्या कर रही हो, तुमको कुछ चाहिए क्या? अरे माँ तुमको कुछ चाहिए तो मुझे कहना होता। और दोनों प्यार करने लगते और प्यार करते करते वापस आते हैं। क्या था ये, माँ और बेटी, बहुत प्यार होता है दोनों का आपस में, परंतु अवचेतन मन में कुछ और ही था और स्वप्न में निकल रहा था कुछ कुछ। और जैसे ही नींद टूटी, होश में आए तो प्यार प्यार करने लगे दोनों। इमोशंस, भावनाएं बहुत सूक्ष्म है, ऊपर से तकता है हमको भी शायद लग रहा होगा इनसे हमारा बहुत अच्छा है, पर अंदर से शायद कुछ और है। हम पकड़ ही नहीं पाते अपनी भावनाओं को, क्योंकि वो अज्ञात सबकॉन्शियस के बेड से निकलती है बाहर। ये कॉन्शियस माइंड, परंतु नीचे 1/9 सबकॉन्शियस है। यदि बर्फ का गोला यहां रख दिया जाए, ये पानी है नीचे, तो ऊपर जो तैरेगा 1/10 एक भाग, और 9 भाग नीचे है। वो जो 9 भाग है वो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है। हम जो दिखाई देते हैं बस इतना है, हमारा जो आचरण है, बिहेवियर है, बस इतना है। पर व्यक्ति गहरा, उसके अंदर बहुत है जो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और वो खुद भी नहीं जानता है अपने आप को, वो ऐसा क्यों कह रहा है, कर रहा है, बड़े बड़े अपराधी और ये सब लोगों के इंटरव्यू लिए गए, उन्होंने कहा हमने ये क्यों अपराध किया हमको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो ऐसे थे ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे थे। पर उस पल उस मोमेंट में क्या वो आवेग आ गया और वो 10 मिनट्स में पाप हो गया, अब उसकी सजा जीवन भर अंधकार, अपने अंधकार की जांच पड़ताल करनी है, अपने अंधकार को खोजना है, मैं कहां अंधकार में हूं। भावनाओं का अंधकार है, नाम मान शान का अंधकार है, प्रसिद्धि का अंधकार है, अहंकार का अंधकार है, ईर्ष्या का अंधकार है, विस्मृति का अंधकार है, देहभान का अंधकार है, देह अभिमान, देह अहंकार, कौन सा अहंकार, कौन सा अंधकार। खोज लेना ही प्रकाश है, पता चल जाना ही मुक्ति है। पता चल गया अर्थात प्रकाश आ गया, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, बस पता चल जाए, पता भर पल जाए, चल जाए और प्रकाश आ गया, अंडरस्टैंडिंग दिख जाए कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र मुझे गिरा रहा है। कौन सी वो बात है जो गिराती है, उसकी खोज करनी है। कौन सी वो चीज है जिसका मैं एडिक्ट बन गया हूं, और हो सकता है ये एडिक्शन सबसे बड़ी बाधा बन गई है। तो दूसरी बात अंधकार, तीसरा जहां पंथ तेरा को ना से जानू, हर का नाम तह नाल पहचानू, ऐसी जगह जहां तुम्हें कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, प्रभु का नाम तुम्हारी पहचान होगा। ये परिस्थिति है नए स्थान पर जब व्यक्ति चला जाए, नई परिस्थितियों में घिर जाए जिसका कोई अनुभव नहीं, ऐसे समय में भी यदि उस पर निश्चय है तो ये निश्चय, ये फेत, ये प्यार, उसकी याद ही हमें बचाएगी, हमारी रक्षा करेगी। और जो भी परिस्थितियां हैं, अननोन है, जो कल परिस्थिति आने वाली है, सुबह से लेकर रात तक अज्ञात है, अपरिचित, जिनके बारे में हमने सुना है पर खुद कभी नहीं गुजरे उन अग्नि परीक्षाओं से, परंतु न जानते हुए भी निश्चिंत रहना, ये योगी की परिभाषा है। सामने खाई है, क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, शत्रु है शायद, परंतु फिर भी निश्चिंत रहना इस विश्वास से कि वो मेरे साथ है। आज के ही मूल्य में आए, विजय निश्चित है तुम्हारी, आ जाया एक जगह, किसने कहा ये, मेरी विजय निश्चित है। एक राज्य पर दूसरा राज्य आक्रमण कर देता है और वो राज्य जो होता है छोटा राज्य होता है, बहुत कम सिपाही सैनिक सामग्री, युद्ध का सामान बहुत कम है, तो राजा अपनी अंतरंग मंत्रियों की मीटिंग करते हैं और प्रस्ताव पारित होता है कि हार मान ली जाए, नहीं जीत सकेंगे क्योंकि शत्रु बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है, आज का माया बलवान है, बॉम्ब काम का, तो वो सोचते हैं कि हार मान लेते हैं। परंतु एक कहता है कि नहीं, गांव के बाहर एक फकीर है, उसको पूछ लो फाइनल, वो कुछ तो बताएगा, क्योंकि आज तक जो भी उसके पास गया खाली हाथ लौट के नहीं आया, तो सब उसके पास जाते हैं। और वो साधु कहता है बिल्कुल हार नहीं माननी है, मैं नेतृत्व करूंगा सेना का। सेनापति कहता है तुम आज तक कभी तलवार पकड़ी क्या, ध्यान लगाए बैठे हो, और तलवार और सेना का नेतृत्व और युद्ध तुम कहां से कर पाओगे। वो कहता है मुझे अवसर दिया जाए, तो वो सेना की टुकड़ी लेता है और जाता है, और बीच में एक मंदिर लगता है, वो कहता है ये जो मंदिर का आराध्य देवता है ये मेरा आराध्य देवता है, जाने से पहले इसका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, और वो आशीर्वाद लेता है और वो देवता को और वो साथियों से कहता है ये एक सिक्का है चित और पट, अगर चित गिरा तो हमारी विजय निश्चित है, ऐसा मुझे देवता ने कहा है, देखते हैं एक बार। फेंकता है चित, सारे सैनिक उत्साह से भर जाते हैं, ऐसे ऐसा अदम्य साहस शौर्य उनमें भर जाता है कि वो छोटी सी सेना और ये नेतृत्व करने वाला दुबला पतला फकीर, और ऐसा घनघोर युद्ध करते हैं कि जीत कर लौट के आते हैं। सेना बहुत बड़ी थी, और जब आते हैं लौट कर तो मंदिर लगता है, सारे सेना के सेना वो जो सिपाही कहते हैं इसी देवता के वजह से हम जीते हैं, कम से कम आभार तो प्रदर्शन करो। वो कहता है वो देवता उसका क्या आभार प्रदर्शन करना है, उसकी वजह से थोड़ी हुआ। वो कहते क्या बात कर रहे हैं आप उसी ने तो कहा था, देवता ने तो कहा था। वो कहता देवता देवता ने कुछ नहीं करा, ये तो कोई सिक्का दोनों तरफ से चित देवता की तो बात ही नहीं है, बात तुम्हारे विश्वास की है। तो विश्वास निश्चय, परिस्थितियां कठिन है कठोर है, परंतु हमें पहले ही पता है हमारी जीत है। यदि कोई देखो हम मैच खेलने जा रहे हैं और कोई बता दे कि तुम जिस मैच में तुम हो उसकी जीत होने वाली है, निश्चिंत होके जाएंगे मैच खेलने, क्योंकि कुछ भी करो मैच जीत तो हमारी है ही, जीवन भी एक संग्राम है, एक मैच है, एक युद्ध है, एक द्वंद है, एक लड़ाई है। इस बैटल में इस वॉर में हमारी विजय निश्चित है। यू आर एट वॉर विथ माया, हमारा युद्ध इनकॉग्निटो है, अदृश्य है। इस अदृश्य युद्ध में भगवान ने कहा है तुम विजयी हो, तिलक दिया है विजय का, जाओ जीत कराओ। इस समर में इस संग्राम में तुम ही विजयी थे और होंगे, ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम है। आज बाबा ने भारत को बहुत याद किया, भारत को फिरंगियों से कैसे बापूजी ने छुड़ाया उसको याद किया, पर वो हद का है मैं बेहद का हूं। वो तो बहुत परेशान है दुखी है। तो जहां सब कुछ अपरिचित है अननोन है, संघर्ष कोई अनुभव नहीं, फिर भी कूद जाना उसमें इस निश्चय के साथ कि जीत हमारी होगी, क्योंकि कहा किसने है तुमको तुम्हारी जीत होगी, किसी ज्योतिषी ने किसी मनुष्य ने, संसार का जो भृगु ऋषि है उसने कहा है, ज्योतिष विद्या का जो जन्मदाता है उस भृगु ऋषि ने कहा है, भाग्य विधाता जो है उसने कहा है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। तो तीसरा है अननोन, चौथा जहां महाभयान तपत बह घाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां महाभयान तपत हीट, टेरिबल हीट जहां पर है, आग जहां पर है, बह घाम, तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, वहां पर प्रभु के नाम की, प्रभु के प्रेम की, प्रभु की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। जहां पर ऐसी तपत तपिश हीट, स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, विकारों की अग्नि जहां है, आग जहां पर है, वहां पर परमात्मा छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। तो ऐसी जब छत्र छाया हमारे ऊपर है तो इस संसार की कोई भी अग्नि हमें सेक भी नहीं आएगी उसकी, चाहे कितनी भी आग हो संसार में, और संसार में आग बहुत है, कदम कदम पर अग्निपथ है, ये आग ही आग है सब जगह, आग, विघ्न, पेपर, परिस्थितियां, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, दुख, षड्यंत्र, काटे बिछे हुए हैं सब सेवा के मार्ग में, योग के मार्ग में और ज्ञान के भी मार्ग में। प्रलोभन ही प्रलोभन है, साइट सीन्स ही साइट सीन्स है, हर एक टेम्प्ट करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, ब्लैक होल की तरह सक कर लेता है हर चीज, हर साधन माया बन सकता है, हर साधन, हर एक सेवा अहंकार का क्षेत्र बन सकता है, हर योग का अनुभव आगे बढ़ने में बाधा बन सकता है, ज्ञान की समझ ज्ञान के अहंकार को जन्म दे सकता है। सारी लड़ाई सूक्ष्म है, दिखाई कुछ भी नहीं देते। साधु संतों को पैसे देते हैं लोग, गृहस्थी पोटलिया ऐसे लेते हैं जैसे कोई लेना देना नहीं अनासक्त, और कमरे में जाकर रात को 12 बजे तक गिनते बैठते हैं कितने मिले, दरवाजे खिड़कियां बंद, कोई देख ना ले। आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, इससे स्वयं को मुक्त करना है। तो तपत आग कितनी भी हो, उसकी याद छाया है, छत्र छाया। और पांचवा है जहां त्रिखा, त्रिखा अर्थात प्यास, मन तुझ आकर रखे, तह नानक हर हर अमृत बरखे। जहां पर थर्स्ट जो है टॉर्चर कर रही है आत्मा को, वहां पर परमात्मा का नाम क्या है, अमृत समान है, अमृत समान उसकी याद उसका प्यार बरसता है। जहां पर थर्स्ट भूख प्यास, आत्मा को किस चीज की प्यास है, सुख की प्यास, इंद्रिय सुखों की प्यास है, टेस्ट की प्यास है, संबंधों की प्यास, बेचैनी होती है। अगर किसी व्यक्ति को कहा कि एक महीना किसी से भी बात मत करना, एक कमरे में बंद, उस कमरे में तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, रह सकेगा शांति में? दो प्रकार के व्यक्तित्व है संसार में, बाह्यमुखी अंतर्मुखी। जो अंतर्मुखी है वो रह सकेंगे, पर बाह्यमुखी वाले बेचैनी होती, कोई तो चाहिए बात करने के लिए, कोई मिले और उससे बात करे, कोई मिले उससे झगड़ा थोड़ा सा करे। जब तक झगड़ा नहीं करेंगे बेचैनी होती है, जब तक किसी को कुछ बोल ना दे, टॉन्ट ना कर दे, हर्ट ना कर दे, थोड़ा व्यंग बाण ना चला दे, तब तक इधर राहत नहीं मिलती कलेजे को। ये उनके कोपिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, खुद नहीं करना और दूसरे कर रहे उसमें बाधा उत्पन्न करना और उनकी निंदा करना, ये उनके डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। आत्माओं ने अपने लिए निर्माण कर रखे। तो प्यास किसकी है आत्मा को, किस चीज की प्यास लगी है संसार में भी और इस परिवार में भी, कहां कहां? नाम की प्यास है, रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट की प्यास है, केयर चाहिए। आत्माएं मेरा ध्यान रखे, मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे सब मिलने आए, सब पूछे आप कैसे हो, और फिर हम कहेंगे कल से मैं ठीक हूं, तो थोड़ी खुशी होती है। प्यार, आत्माएं प्यार करे, हम दे या ना दे वो दूसरी बात है, पर वो प्यार करने चाहिए। अटेंशन दे, ध्यान रखे, समय दे, हमारी बात सुने, हमारी माने, हम जो कहे उसको स्वीकार करे। ये सारी प्यास है आत्मा की। पर क्या ऐसी प्यास कभी पूरी होती है? आज तक हुई है किसी की प्यास? जितना दो वो देने के बाद प्यास कम नहीं होती है। पर ये अच्छा होता कि प्यास कम हो गई, बुझ गई, अब संसार के सारे भोग भोग लो, एक बार पूरे हो गए, अब उससे मुक्त हो जाओ। कितनी अच्छी फिलॉसफी है। जलेबी कितनी खानी है? आज बहुत खा लेता हूँ, फिर एक बार कल से, आज खा के कल से मुक्त, कल से छोड़ दूंगा, पर आज पूरा जितना इतना खा लूंगा कि उल्टी आ जाए, ताकि वैराग आ जाए उससे। ऐसी फिलॉसफी भी एक फिलॉसफी है कि बहुत खाओ बहुत खाओ बहुत खाओ और फिर उससे वैराग आ जाओ, छोड़ दो उसको हमेशा के लिए। पर उल्टा ही हो गया। जितना खाओ वो टेस्ट और वो स्वाद का संस्कार अंदर निर्माण हो गया। वो जो बीच का पीरियड है, गैप है केवल, पॉज, और वो पॉज पूरा होते ही फिर से उसमें भिड़ जाओ, फिर से वही प्रकट हो जाता है। तो उल्टा ही हुआ। तो ये फिलॉसफी काम नहीं करती है। तेन तत्वे न भुग्निता, उपनिषदों में लिखा है, संसार की वस्तुओं का भोग करना है उनका त्याग करके। जिलेबी को एंजॉय कैसे करना है? उसको छोड़ दो, यही सबसे बड़ा एंजॉयमेंट है। ये उदाहरण है। तेन तत्वे न भुग्निता, महात्मा गांधी ने कई जगह इसका उदाहरण लिखा है कि संसार की वस्तुओं का भोग उनके त्याग करने से करो, यही वास्तव में परम भोग है। क्योंकि वो कितना भी डालो और कितना भी भोगो, इच्छाएं अपूर नहीं है, थर्स्ट है एक। तह नानक हर हर अमृत बरखे, जहां पर ऐसी प्यास है वहां पर परमात्मा प्रेम क्या है? वर्षा है अमृत की। तो ये पांच बातें हमने देखी। सबसे पहली, लंबा मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग, परंतु उसका सहारा है। दूसरा, अंधकार है परंतु वो उजियारा है। तीसरा, अज्ञात परिस्थिति आएगी परंतु निश्चय की विजय हमारी है, मार्ग वो दिखाएगा। चौथा, हीट, तपत, आग, परंतु शीतल छत्र छाया है। और लास्ट, प्यास, प्यास भी हो तो वो बुझाएगा। तो ये थी आज का सुखमनी का पाठ। आज की साकार मुरली में क्या क्या कहा? क्या क्या कहा? दो तीन पॉइंट्स बताएंगे। तन मन धन से क्या करो? भारत को स्वर्ग बना दो। और क्या कर दो? बुद्धि में बिठा दो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। और कर्मातीत अवस्था के विषय में बाबा ने कहा, कल की मुरली में भी बाबा ने दीदी के विषय में कहा था, दो प्रकार की आत्माएं, कर्मबंधनी, कर्मातीत। कर्मातीत आत्मा किसी भी समय सेवा कर सकती है, कहीं पर भी सेवा कर सकती है, चारों दिशाओं में हर जगह जाकर, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह बैठकर सब जगह की सेवा कर सकती है। जैसे दीदी का उदाहरण, हवा मौफिक चली गई, दीदी का उदाहरण, ट्रांस और ट्रांसफर हो गई, स्पीड तीव्र हो जाती है। तो कर्म बंधनी आत्मा की छोटी सेवाएं, कर्मातीत की बड़ी सेवा। इस देह में रहते ही कर्मातीत का अनुभव, जैसे बाबा ने पर आज कहा, वो लास्ट में होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए तुमको। और माता पिता को फॉलो करो, और प्रैक्टिस करते रहना है, और हृदय साहूकारों का हृदय विदीर्ण हो जाता है, बाप कौन है, गरीब निवास, और हाँ, जैसे बाप कौन है, विश्व सेवाधारी, वर्ल्ड सर्वेंट, वैसे तुम भी वर्ल्ड सर्वेंट हो, पर तुम्हारा वर्ल्ड सर्वेंट बनने से पहले त्याग और तपस्या होनी चाहिए। और जो ऐसी आत्मा होगी सेवाधारी, वो लेने का संकल्प नहीं होगा, लेगी नहीं, देगी। तो ये है मम्मा बाबा को फॉलो करना, और क्या कहा, बहुत सारी बातें कही। हाँ क्या क्या, हाँ ड्रामा में तुम्हारी विजय न्यूंधी हुई है, और परिस्थितियों में विजयी, और राजाई को याद करने से रोमांच खड़े हो जाते हैं, क्या तुम्हारा उच्च पद था, और नेचर की ओर, नेचर की ओर क्या होता है, एक है नेचर की ओर, एक है नेचुरल हाइजीन, एक है नेचुरोपैथी, एक है ऑर्थोपैथी, उसमें बहुत सारे पार्ट है एक है रॉ फूडिज्म, एक है वीगनिज्म, एक है वेजिटेरियनिज्म, ऐसे अलग अलग है, बहुत सारा है उसमें। नेचुरोपैथी में भी बहुत सारा, एक है हाइड्रोथेरेपी, डॉक्टर शेल्टन नाम का व्यक्ति था, उसने सबसे ज्यादा काम किया है नेचुरोपैथी कहो या रॉ फूड कहो या फिर नेचुरल हाइजीन कहो, 100-150 साल पहले। और कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो, और उन्होंने गांधी की मत पर स्वतंत्रता पाई, तुम कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। जरासंध का जेल कौन सा है, कंस का जेल तो है, आज कहा कंस जरासंधी का जेल में माताएं बंदी है, वो तो अंग्रेजों के जेल में थे स्वतंत्रता सेनानी, वहां पुरुषों ने ज्यादा सहन किया, यहां माता जा जाकर सारा झगड़ा ही किस पर है, पवित्रता पर। जरासंध का कौन सा जेल है, जरासंध का जेल है कोई नहीं दिखाया है, वो तो मगध का सम्राट था, भीम ने उसको टुकड़े कर दिया, एक इधर और एक इधर मार दिया था ना, उसने किया था, उसने किया था कि किसी और ने किया था, उसी ने किया था, श्योर तो जेल, और क्या कहा, बीमारी, बीमारी का भय नहीं रहेगा, और ये जो मुरली की अलग अलग चर्निंग मेथड्स है इसका रोज प्रयोग करना है। तो अगले ट्यूसडे से लेकर तो नेक्स्ट संडे तक रोज इनमें से कोई ना कोई एक मेथड लेनी है, ये आपको मिल जाएगी, वो वेबसाइट पर भी है और वैसे भी नहीं तो मिल जाएगी। कल जो मुरली चलेगी, साकार मुरली सैटरडे तक चलने वाली है, ट्यूसडे से सैटरडे तक, इसमें आप सबको एक काम दे रहे हैं, अभी दो काम दे रहे हैं, दो मेथड का प्रयोग करके मुरली का अध्ययन करना है। पहली मेथड है कॉन्ट्रास्ट मेथड, दूसरी मेथड है एग्जाम्पल मेथड। कॉन्ट्रास्ट में जो मुरली सुबह चलेगी, सुनते सुनते ही कॉन्ट्रास्ट क्या क्या किया है, जैसे आज कॉन्ट्रास्ट किया हद का बापू बेहद का बापू, उधर की स्वतंत्रता इधर की स्वतंत्रता, अंग्रेज फिरंगी तो वो एक ही पॉइंट हो गया, ये कॉन्ट्रास्ट किया ना, जरासंधी का जेल यहां का जेल, हाँ इधर के सुख और उधर के सुख, ऐसी कौन सी कॉन्ट्रास्ट की 10 पॉइंट्स निकालनी है हर दिन मुरली से, एवरी डे ये एम रखना है कि मुरली से हमको कॉन्ट्रास्ट क्या क्या था, इधर 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 ये 10 पॉइंट्स, और दूसरा उसी मुरली से एग्जाम्पल कौन कौन से दिए, मीरा नारद व्यक्ति व्यक्ति कौन किस किस के एग्जाम्पल दिए, जैसे आज एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, जरासंध और कंस ये नाम है, शास्त्रों से नाम लिए हुए बाबा उधर के प्रयोग करते, तो पूरी मुरली में टोटल कितने एग्जाम्पल्स आए हैं, इसको अलग छांट लेना है। तीसरा और एक काम, इंग्लिश शब्द कितने कितने आए, 108 निकाले थे पर अभी रोज की मुरली से निकालने हैं, जो कुछ कुछ इंग्लिश शब्द का ही बाबा प्रयोग करते उनको कभी भी हिंदी प्रयोग नहीं करते, बैचलर स्कॉलरशिप ड्रामा नाटक भी कहते हैं पर ड्रामा को, इनकॉग्निटो हमेशा इनकॉग्निटो है, फॉलो फादर तो ऑलमाइटी, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आते हैं इंग्लिश वाले रहते हैं. नथिंग न्यू को कभी ऐसा बोला नहीं, सब कुछ वही, सब कुछ नया, ऐसा कभी नहीं, कुछ भी नया नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नथिंग न्यू ही प्रयोग करते. तो कभी कभी होता है, पर कुछ कुछ इंग्लिश एकदम रिटेन वही इंग्लिश ही रहते हैं. तो ये तीन मेथड से काम करना है. मुरली में कॉन्ट्रास्ट क्या क्या है वो निकालना, तुलना किस बात की है दो चीजें की, उदाहरण कौन कौन से दिए और इंग्लिश शब्द कौन कौन से है. अपनी एक डायरी बनानी है, ये पेज है डायरी का, इसमें हम लिखेंगे कॉन्ट्रास्ट मेथड, कॉन्ट्रास्ट के नाम. दूसरे पेज में लिखेंगे एग्जाम्पल मेथड, 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल, और नीचे एक छोटा सा आज की मुरली में आए हुए इंग्लिश वर्ड्स की एक लिस्ट, जस्ट उसको हम थोड़ा सा मन में डिवाइड करने के लिए. ये हो गया मुरली का होमवर्क. दूसरा होमवर्क है ज्ञान योग संबंधित होमवर्क. जिसकी जितने बजे से सेवा चालू होती है, सुबह अमृत वेला कर लिया, मुरली कर ली, नाश्ता कर लिया, सब कर लिया, सेवा की फील्ड में, सेवा के फील्ड में एंट्री होते ही, अगर 9 बजे एंट्री हो रही है, 8 बजे एंट्री हो रही है, 8 से 2 बजे तक, 3 बजे तक, जिसकी जितने बजे तक सेवा है, वो पूरे सेवा पीरियड में 2-3 काम करने हैं. कम से कम 25 लोगों को आत्मा देखना है होश में. ऐसा नहीं सब आत्मा ही घूम रहे, वो नहीं. ये आत्मा है और इस आत्मा को मैं पवित्रता की किरणें दे रही हूं. ये आत्मा है, इस आत्मा को मैं शांति की किरणें दे रही हूं. आज का ना आत्मा का स्वधर्म शांति है. इस आत्मा को मैं साइलेंस की किरणें दे रही हूं. और उसका मैं भी ध्यान ना रहे चलेगा. हम देख रहे हैं आसपास, देखा कुछ आत्माएं बैठी है, किरणें दी, ऐसे गिन कर 25 लोगों को आत्मा देखना. अगर कोई ना मिले तो इधर बैठ जाओ कहीं, लोग चलते फिरते घूम रहे हैं, उनको देते रहो किरणें. ये काम करना है. और ज्ञान सरोवर में जो भी कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी विंग्स के लोग आते हैं, अमृत वेला और नुमाशाम, अमृत वेला और नुमाशाम के दो समय फरिश्ता रूप में बनकर जाना हारमोनी हॉल या फिर मेडिटेशन हॉल, जहां पर वो सारे लोग बैठे हुए हैं, और उन सबको जगाना, आह्वान करना. जैसे कल की मुरली में था, ब्रह्मा बाबा ने पहले ही तुम्हारा आह्वान किया था, पहले गर्भ में थे, पेट से बाहर तो अब निकले हो. तो वैसे आत्माओं का भी आह्वान करना, आत्माओं को सकाश देना. ये दो काम योग में करने हैं, आत्मा देखना और यहां जो भी आत्माएं आती है नई, उन सबको सकाश. अच्छा, ओम शांति.